हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 33, 34, 35 एंड 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदम् तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। सम्राट परीक्षित के जन्म के विषय में अत्यंत सुंदर भविष्यवाणी करने के उपरांत जब सारे ब्राह्मण चले गए तो उसके बाद हमने सूत गोस्वामी ने हमें बताया कि महाराज परीक्षित बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे क्योंकि उनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे निरपराध प्राणियों का वध हुआ था। तो इसके कारण वो सोच रहे थे कि अब मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी ऐसे बताया था और उसके अतिरिक्त भगवान ने भी और शास्त्रों में भी कहा गया है यज्ञ करने से आपके अपराध जो है उनका प्रभाव खत्म हो जाता है और आप पवित्र हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए होता है और युद्ध के उपरांत तो राजकोष खाली हो गया था, तो फिर उन्हें धन एकत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया वो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 33 में। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तदभी प्रीतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चूदितः दानं प्रहीणमाजुः उदीच्यां दिशि भूरिशः। तदभी प्रीतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चूदितः धनं प्रहीणमाजुः उदीच्यां दिशि भूरिशः। तदभि प्रीतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदितः धनं प्रहीणमाजुः हृदीच्यां दिशि भूरिशः। तद मतलब उसका और अभिप्रेत का मतलब उनके मन की इच्छा, उनके मन का अभिप्राय आलक्ष्य यानी देखकर। उनके जो भाई थे अर्जुन भीम इत्यादि, जब उन्होंने जाना कि महाराज अब युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं, भ्रातरो अच्युत चोदिता, अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण, चोदिता मतलब उनकी प्रेरणा पाकर। भगवान श्री कृष्ण ने उनके भाइयों को प्रेरणा दी कि क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर अब यज्ञ करना चाहते हैं, तो उनकी प्रेरणा से धनम प्रहीणम, धनम का मतलब होता है धन, प्रहीणम मतलब एकत्रित करने के लिए आज ले लिया। क्या क्या अब वो अधीच्यां दिशा मतलब वो अब उत्तरी दिशा में शुमाल की तरफ हो गए, भूरिशा, वहां पर प्रचुर मात्रा में धन था, स्वर्ण था, तो उसको लाने के लिए उसके भाई गए। उनको भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रेरणा दी कि अब आप ऐसा करो, उत्तरी दिशा में जाओ और बहुत सारा धन लेकर आओ ताकि महाराजा युधिष्ठिर यज्ञ कर सके। अनुवाद, राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्रित किया। अब राजा मरुत कौन था और उसका धन कहाँ से आया उत्तर दिशा में, वो हमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि राजा मरुत ये संसार के एक महान सम्राट थे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था और ये महाराज अविक्षिप्त के पुत्र थे और सूर्य देव के पुत्र यमराज के परम भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंद्वी पुरोहित था। उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया जिससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंघ का अधिकारी बना दिया। अब ये जो मरुत था उसका एक भाई था, वो देवताओं का जो बृहस्पति था उसका प्रतिद्वंदी था और उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया था। और क्योंकि शंकर महादेव भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे और भगवान ने उन्हें एक पर्वत की श्रृंगा, एक पर्वत के विषय में बताया था, वो उसका अधिकारी बना दिया था। और वो पर्वत कैसा था, यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक इसकी खोज कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये पर्वत अभी भी है, कहाँ पर, हिमालय पर्वत में कहीं पर है। तो अगर आज भी कोई, आज के लोग भी अगर चाहें, आधुनिक लोग भी, तो वहां पर खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों के देवता उसका महल देखने आते थे। वो इतने यज्ञ करता था और फिर उस सारे देवता आते थे संसार में। देवता लोग के पास भी इतना वैभव नहीं था जितना उसके पास था, तो वो आते थे इंद्र चंद्र और बृहस्पति वगैरह, क्योंकि उसके अधिकार में स्वर्ण सिंह था, मतलब उसके पास जो समझो सोने का एक पर्वत था, जिसे पहाड़ के ऊपर जो चोटी होती है ना उसको बोलते हैं स्वर्ण सिंह। तो अब उसके पास पूरे सोने की समझो छोटी पहाड़ी थी, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतः सोने का बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले यज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ वासियों को रसोई बनाने के काम के लिए आमंत्रित किया जाता था, तथा देवों की सभा का संचालन विश्वदेव करते थे। अभी वहाँ पर इतना ज्यादा धन था और वहाँ पर रसोई बनाने के लिए यज्ञ के टाइम पर बहुत ज्यादा रसोई बनाई जाती थी, धन धान्य दिया जाता था और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, और वायुदेव के रसोई बनाने वाले वहाँ पर आते थे, कुछ वासी वायुलोक के कुछ वासी आते थे। और उसके अलावा देवों की सभा के संचालन जो थे विश्वदेव वो करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से सारे रोगों को दूर रखने में समर्थ थे। इतने पुण्यवान राजा थे कि उसके राज्य में कोई बीमार नहीं था। उसके महान यज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे वासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया आसन वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते थे। अभी इतना सोना दान करते थे और इसके अतिरिक्त भी जितने भी ब्राह्मण थे उनको बहुत ज्यादा दान देते थे, तो पितृलोक और सारे देवलोक भी बहुत उससे प्रसन्न थे, क्योंकि इतने सारे यज्ञ करते थे, इतना सारा दान देते थे, तो कोई भी गरीब नहीं था। अब जाहिर सी बात है, सोने का पहाड़ जिस राजा के पास हो तो जितना चाहे लुटा सकता है। तो अपने मुक्त हस्त दान यानी बिल्कुल दिल खोल कर दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। इंद्र भी उससे जेलसी नहीं करता था, बल्कि उसे बहुत ज्यादा प्रसन्न था और उसके लिए मंगल कामना करता था। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा मंत्रियों वैद्य पत्नी पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्ष तक राज्य किया, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा। इतने पुण्य उसने एकत्रित किए कि वो बूढ़े नहीं हुए, पूरा 1000 साल तक उसने राज्य किया, लेकिन वो सदैव यौवन बने रहे। लेकिन अपनी पत्नी से संतुष्ट थे, अपने मंत्रियों से प्रजा को संतुष्ट करते थे और उनसे संतुष्ट थे, यहाँ इसे भगवान श्री कृष्ण भी उनकी प्रशंसा करते। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा के साथ करा दिया और उनके आशीर्वाद से वह स्वर्गलोक का भागी बना। अभी महर्षि अंगिरा ऋषि के साथ उनकी पुत्री का विवाह करवाया और फिर वो स्वर्गलोक के अधिकारी बन गए। पहले तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार किया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्त्य प्राणी होता था। इससे वे परम दुखी हुए, लेकिन नारद के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया था और अपने उद्देश्य में सफल। अब बृहस्पति जो कि देवताओं के राजा थे, उन्होंने सोचा कि मैं इसको यज्ञ का संचालन कराता हूँ कि आप आइए और यज्ञ के पुरोहित बने, लेकिन वो तो देवताओं के पुरोहित है ना, तो राजा तो फिर भी संसार का है और मर्त्य प्राणी है, मतलब कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बृहस्पति ने बोला मैं सांसारिक लोगों का यज्ञ नहीं करता। बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर नारद मुनि ने कहा आप फिक्र नहीं करो, आपके जो भाई हैं संवर्त उनको यज्ञ का ये आदेश बनाओ। और इस तरह से उन्होंने अपने भाई संवर्त को यज्ञ कराने के लिए पुरोहित बनाया और सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता उत्तरदायी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित है, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण नहीं बनते। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कोई भी ब्राह्मण का पुत्र है तो वो ब्राह्मण है और वो यज्ञ करा सकता है। यज्ञ कराने के लिए विशेष योग्यताएं चाहिए होती है, लेकिन इस युग में किसी के पास भी ऐसी योग्यता नहीं है कि वो आपको अश्वमेध यज्ञ करा सके या गौवेध यज्ञ करवा सके। किसी के पास भी ऐसी योग्यता नहीं है, तो अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ। इसका उद्घाटन भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते खबरदार, इस युग में दूसरे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस युग में विशेष संस्तुति की गई किसकी, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम रचित। इस कलयुग के लिए अगर कोई यज्ञ की संस्तुति की गई तो हरिनाम संकीर्तन के यज्ञ की, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने उसकी संस्तुति की है और उसका उद्घाटन किया है। आगे सूत गोस्वामी बताते हैं, तेन संभृत संभारो धर्म पुत्रो युधिष्ठिर वाजी मेध स्त्री भीर्भीतो यज्ञ समयजत्विरम यज्ञ समयजत्धरिम तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजी मेध स्त्री भीर्भीतो यज्ञ समयजत्धरिम तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजी मेध स्त्री भीर्भीतो यज्ञ समयजत्थरिम तेन संभृत संभारो। मतलब इस तरह से वहां से जो धन लेकर आए, उस धन को एकत्रित हुआ धर्मपुत्र युधिष्ठिर, धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर थे, वाजमेध अश्वमेध यज्ञ द्वारा। कितनी दफा वाजमेध त्रिभीर, तीन बार अश्वमेध यज्ञ किया। क्यों, भीत वो बहुत ज्यादा भयभीत थे, कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बहुत ज्यादा हानि हुई थी, जीव हत्या हुई थी, उसके कारण वो बहुत ज्यादा भयभीत थे। और फिर यज्ञ मतलब इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यज्ञ किया, ठीक तरीके से पूजा की। हरिम मतलब भगवान हरि की, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, कि भगवान हरि ने देखा है कि मेरी कारण इतने सारे लोगों की हत्या हुई है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तीन बार अश्वमेध यज्ञ किया। अनुवाद देखिए, उस धन से राजा ने तीन अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं, महाराजा युधिष्ठिर विश्व के आदर्श तथा विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने सिर्फ राज्य को प्राप्त करने के लिए इतना नरसंहार किया, अतएव युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं, इसके लिए महाराजा युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। अब यहाँ पर बता रहे कि जब युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करना था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि सारा नरसंहार मेरी वजह से हुआ है, तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया, लेकिन ऐसे यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। महाराजा युधिष्ठिर जैसे सम्राट को भी उसके लिए बहुत सारे सोने की आवश्यकता पड़ी, और महाराजा मरुत का सोना और उन्होंने जो ब्राह्मणों को सोना दान किया था वो सब लाना पड़ा। चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे, अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे पीछे छोड़ गए थे। अभी वो इतना सारा सोना निकाल के वो उनके पास, क्योंकि पहाड़ था पूरा सोने का, तो इतना सोना ब्राह्मणों को देते थे कि ब्राह्मणों के पास, एक तो जो वो आते ही शुद्ध ब्राह्मण थे उसके पास, तो उनको इतने ज्यादा लालच भी नहीं होती थी और वो थोड़ा लेके जाते थे, थोड़ा वहीं पर छोड़ के चले जाते थे। तो महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। अब उनको तो लगता था कि मैंने ये दान दे दिया, अभी मैं वापिस से कैसे उठाऊं। तो इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण के पात्र कुंडे में फेंक दिए गए थे। अभी रोज यज्ञ होता था, डेली यज्ञ होता था, और डेली सोने के बहुत सारे बर्तन जो है वो एक ना खड्डा खोद के उसके अंदर डाले जाते थे, और यह सोना तब तक अनधिकृत रूप में पड़ा रहा। मतलब अधिकार, अभी वो पड़ा हुआ था, कोई उसको उठा ही नहीं रहा था, कोई उसका अधिकारी नहीं था, मतलब कोई उसका वारिस नहीं था, लावारिस पड़ा हुआ था। जब तक महाराजा युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्रित नहीं कर लिया, भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि इस अनधिकृत सोने को ले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, कुएं में बर्तन पड़े हुए हैं, और जो ब्राह्मणों को भी सोना दिया है वो भी ऐसे पड़ा हुआ है लावारिस, तुम लोग जाओ वो सारा सोना लेके आओ। तो क्योंकि यह सोना राज्य का था, सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्रित करके कोई उद्योग नहीं चलाया। अब हैरानी की बात श्री प्रभुपाद ये है कि राज्य में पड़ा हुआ था ऐसे ही, लेकिन लोग जो थे वहां के वो इतने संतुष्ट थे, महाराज युधिष्ठिर थे, कि किसी को ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम लोगों को बहुत सारा सोना जमा करना चाहिए और उससे कोई उद्योग चलाए। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा या अत्यंत राज्य की प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्र तृप्ति के लिए व्यर्थ के का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगा भेजी, अन्यथा राजकोष के लिए एकत्रित करने की उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। ऐसा नहीं सोच रहे थे कि इतने सोने लेकर आए और राजकोष को बहुत ज्यादा बढ़ाएं। राजकोष को बढ़ाकर या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उन्होंने नहीं मंगाया, बल्कि क्यों मंगाया, ताकि यज्ञ करें और भगवान को प्रसन्न करें। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें इसको समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमें चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करें। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयभीत थे, अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे सूचित होता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं, और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जीव हत्या के कारण बहुत ज्यादा भयभीत थे और वो यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते। श्री प्रभुपाद जी बोलते जरा गौर से तो देखो, आप अपने दिनचर्या में कितनी जीव हत्या करते हो, कितने सारे जीव तुम्हारी वजह से दुखी होते हैं, तो फिर शास्त्रों में जो अनुमोदित किए गए हैं उनको यज्ञों को आप संपन्न करो ताकि भगवान आप पर प्रसन्न हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करते हो, केवल इंद्र तृप्ति के लिए करते हो, तो लोकोऽयं कर्म बन्धनः, वो कार्य तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा। कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते और स्वार्थ अथवा इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य प्रयोजन परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां
देश काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकते हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सदा सर्वदा एक ही रहता है और वो है परमेश्वर हरि की संतुष्टि। श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि देश काल पात्र और व्यक्ति के अनुसार यज्ञ की विधि तो बदल सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। यज्ञ केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, परमेश्वर हरि को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। पुण्य जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता की रीति है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्य आत्मा राजा के रूप में यह सब किया था, और ये जो पुण्य आत्मा महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं वास्तव में हमें सिखाने के लिए कि हम भी तो कितने अपराध करते हैं, तो हमें भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदैव यज्ञ करते रहना चाहिए। और वो यज्ञ कौन सा है वो श्री प्रभुपाद जी हमें आगे बताएंगे। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कर्मों के संचालन में, जहाँ मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठते, तो जरा अनुमान करें कि कलयुग की अशिक्षित जनता जाने अनजाने में कितना पाप करती है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन नहीं है, अतः भागवतन का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि अपने वृत्ति पर कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। श्रीमद् भागवतम 1.2.13। श्रील प्रभुपाद जी हमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 13 की ओर याद कराते हुए बता रहे हैं, जिसमें वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी को नारद मुनि ने कहा था, अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण, कि इस संसार में आप कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो, आपका परम कर्तव्य क्या है, अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः, कि यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है, स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, अगर आप अपने कर्तव्यों को पूरे अच्छे तरीके से करते हो तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए, संसिद्धिम हरितोषणा, भगवान हरि को प्रसन्न कर। अगर आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आपके कर्तव्य पालन से भगवान को संतुष्टि नहीं हो रही है, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, फिर चाहे पूरी दुनिया को भी प्रसन्न कर लो, आपने अपने धर्म का सही पालन नहीं किया, क्योंकि वास्तविक आपका धर्म क्या है, संसिद्धिम हरितोषणा, आपका कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भले ही कोई किसी भी स्थान या समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्ति परक कार्य में क्यों न लगाओ, लेकिन उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ का गुणगान करें। क्या करना है, कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थलों पर विशेषतया आरंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन वृत्त प्रस्तुत करते समय इस विषय पर बता चुके हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि कलयुग में क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस तरह हम पर प्रसन्न होते हैं, और वही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान कहते हैं, सततम कीर्ते तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि आप कंटिन्यूस प्रेम से मेरा भजन करो। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कीर्तनात् देव कृष्णस्य, कीर्तनात् देव कृष्णस्य। अमानी नमान देना कीर्तनी है सदा हरि, सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान ने कहा सदैव मेरे नाम का कीर्तन करो, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, इसी से आपका कल्याण होगा। आगे श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री हेतु स्वर्ण राशि एकत्रित करनी पड़ी थी, अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात भी नहीं सोच सकते, है ना। महाराज युधिष्ठिर को भी परेशान होना पड़ा था सोना लाने के लिए, मरुत राजा का सोना लेकर आना पड़ा। तो आज तो हम लोग सोना पहले क्या करते थे, हाथी और घोड़े जो हैं उनको सोने की ज्वेलरी पहनाते थे, आज तो लोग के पास अपने पहनने के लिए भी सोना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी हम तो ऐसी बात भी नहीं सोच सकते। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा इसे स्वर्ण में बदलने का वादा है। सब बोलते हैं कि ये जो आपका धन है ये रुपए की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, ये स्वर्ण में बदल जाएगी, ऐसे वादे तो करते हैं। फिर भी हम ना तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक या राज्य संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। इतना धन तो फिर भी चाहे हमारा धन जो है हमारा रुपया कितने ही नोट की कीमत बढ़ जाए लेकिन फिर भी नहीं कर सकते। अतएव इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इस विधि में किसी प्रकार का खर्च नहीं होता, फिर भी इससे अन्य व्यय साध्य यज्ञ विधियों से अधिक लाभ प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि ये महामंत्र जप करके इसका कीर्तन करके आपका कोई धन तो लगेगा नहीं, लेकिन बाकी जितने सारे यज्ञ हैं उनको संपन्न करके जो लाभ प्राप्त होता है उससे भी अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। तो भगवान कितने कृपालु हैं, जानते हैं कि कलयुग के लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान के पवित्र नाम का यज्ञ करो, भगवान के पवित्र नाम का यज्ञ करो, भगवान के पवित्र नाम का यज्ञ करो। इसके अतिरिक्त इस कलयुग में गति प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विद्या है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जो यज्ञों में पशु बलि दी जाती है उसके विषय में बता रहे हैं कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये विधि है पशुओं को मारने की। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। जैसे ही ब्राह्मण उसकी बलि दे देते थे तो उनको दोबारा से वापस जीवित करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। सारे वेद मंत्र व्यावहारिक हैं और इसका प्रमाण तथा बलि किए गए पशु को नवजीवन का प्राप्त होना, ये सारे वैदिक मंत्र जो थे वो व्यवहारिक हैं, अभी भी व्यवहारिक हैं, लेकिन क्योंकि अभी इतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं हैं जो बलि देकर पुनः पशु को नवजीवन प्राप्त प्रदान कर सके, तो पहले ये प्रमाण होता था कि जब भी कोई भी ब्राह्मण यज्ञ करके बलि देता था तो उसको पुनः जीवित करता था। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या प्राहतों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्र का विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसी नहीं है, अतएव उनकी गिनती शूद्रों में की जाती है। ऐसा मनुष्य आजकल के ब्राह्मणों को तो पता ही नहीं है कि किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से विधि होती है, तो उनकी गिनती श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शूद्रों में होती है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए अयोग्य होता है, अतएव मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। फायदा क्या होगा, उनको तो मंत्र सही तरह से उच्चारण करने आते ही नहीं है, तो फिर लाभ ही नहीं होगा वो सब। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों की रक्षा करने के लिए समस्त व्यावहारिक कार्यों के लिए संकेतन आंदोलन या यज्ञ का विधान दिया है और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए जोरदार संस्तुति की गई है। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी ऐसी जरूरत नहीं है कि आप किसी दूसरे ब्राह्मण को ढूंढो और उसके लिए देखो कि वो यज्ञ कर रहा है, सही कर रहा है, सामग्री सही है, ये सब मत करो, छोड़ो। आपको जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस संकीर्तन यज्ञ आंदोलन की संस्तुति की है और वही हमें करना चाहिए, उसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन महाराजा युधिष्ठिर ने जो यज्ञ करवाए थे वो तो साक्षात भगवान के निर्देशन अनुसार हुए थे, तो वो बिल्कुल ही सुनिश्चित और बिल्कुल सही तरीके से ध्यान से भगवान ने स्वयं करवाए थे। वो बता रहे हैं सुख गोस्वामी आगे श्लोक नंबर 35 में, आहु तो भगवान राजा राजयी त्वा द्विजेर निपम उवास कतिचिन मासान सुहृदां प्रियकां यया। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजेर्नृपम् उवास कतिचिन मासान सुहृदां प्रियकां यया। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजेर्नृपम् उवास कतिचिन मासान सुहृदां प्रियकां यया। आहुतो भगवान राज्ञा, राज्ञा मतलब राजा युधिष्ठिर द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण को आहुता यानी बुलाया गया। अब जब बहुत सारा धन अर्जुन इत्यादि लेकर आ गए तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण याजयित्वा द्विजय नृप, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ संपन्न करवाया, क्योंकि कृष्ण आए थे। भगवान जब भगवान को कैसे बुलाया था उन्होंने, सुहृदां प्रियकां यया, बहुत प्रेम से, बहुत ही प्रेम से उनको बुलाया था और फिर जब भगवान आए थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यज्ञ करवाए। उवास कतिचिन मास और कुछ समय तक वो वहां पर हस्तिनापुर में रहे थे, ये हमने पहले पढ़ा था ना, उसी को वापस से बता रहे हैं, क्योंकि अभी आगे कथा बढ़ाएंगे। तो यज्ञ करने के बाद भगवान रुके थे और फिर महाराज युधिष्ठिर उसको बोल रहे थे कुछ दिन और रुको, फिर उसके बाद भगवान ने विदा ली थी, उसी के बारे में बता रहे हैं। अनुवाद देखिए, महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास तक रहे थे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता की निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अग्रज के आदेश का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया था। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता है, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्यों से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों की तुल्य होती हैं, अतएव ऐसे ब्राह्मण बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण हैं अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्राह्मण के घर पे जो उत्पन्न होता है वो अभी तक जरूरी नहीं, पहले से ही थोड़ी उसके पास पूरी शिक्षा होती है, तो उसको जरूर किसी शुद्ध ब्राह्मण जो पहले से निपुण हो उसके पास जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद ही वो इस योग्य होता है कि वो ब्राह्मण का कार्य करे। ऐसा नहीं बस ब्राह्मण का बेटा हो गया तो वो अधिकारी बन जाए। और फिर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक हस्तिनापुर में रहे, उसके बाद यहाँ सुख गोस्वामी अंतिम श्लोक में बता रहे हैं, ततो राज्ञा भ्यनो ज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः ततो राज्ञाभ्यनु ज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः ततो राज्ञाभ्यनु ज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृत ततो राज्ञाभ्यनु ज्ञातः। मतलब उसके बाद जब कुछ समय भगवान बैठे तो राजा द्वारा अभ्यनु ज्ञात मतलब अनुमति दिया जाकर राजा से जब भगवान ने कहा कि अब आप मुझे अनुमति दीजिए मैं जा रहा हूँ, फिर भगवान ने कृष्णो सह बंधु भी कृष्ण या मतलब द्रौपदी से और दूसरे जो बंधु बांधव वहाँ पर हस्तिनापुर थे उन सब से विदा ली ययो द्वारवतीम और उसके बाद वो द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। हे ब्रह्मन यानी सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को सूत गोस्वामी शौनक मुनि को बता रहे हे ब्रह्मन उसके बाद राजा युधिष्ठिर से द्रौपदी महारानी से और दूसरे बंधुओं से विदा लेकर सार्जुनो यदुभि कुछ यदुवंशियों और अर्जुन के साथ भगवान अपने घर द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। अनुवाद हे शौनक तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान किया। और यहाँ से हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण फिर द्वारिका में किस तरह पहुंचे, उन्हें कितनी सारी भेंटें मिली, किन किन लोगों से किस तरह मिले, अपनी माताओं से मिले, अपनी पत्नियों से मिले और द्वारिका में संतुष्ट होकर आनंद से रहने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां प्रथम स्कंदे सम्राट परीक्षित जन्म योगो नाम प्रवेशो नामक द्वादशोध्यायः। हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।